नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbcindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। तमाम वो श्रोता जो सीधे मोबाइल से हमसे जुड़ गए हैं, उसमें अरुण कुमार हैं और सचिन हैं, जो कि हमें नमस्कार कह रहे हैं कि मैं इस कार्यक्रम को फेसबुक पर सुन रहा हूं। हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001 पर आप मुफ्त फ़ोन कर सकते हैं, कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। विषय एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जिन्होंने अपना फेसबुक और रेडियो सेट अभी ऑन किया है, गुजरात विधानसभा चुनाव पर GST और नोटबंदी का कितना असर पड़ेगा और क्या व्यापारियों, पटेलों और दलितों की नाराजगी का राजनीतिक फ़ायदा कांग्रेस उठा पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल असम के गुवाहाटी में GST काउंसिल की बैठक हुई थी और उसमें 178 उत्पादों से GST घटाने का फैसला किया गया। GST काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये बदलाव आने वाले 15 नवंबर से लागू होंगे।
कुछ ऐसे आइटम्स हैं, मैं कैटेगरीज बतला देता हूं। एक तो जो सेस आइटम्स हैं, जिसमें लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स आते हैं, वाइट गुड्स आते हैं, और कुछ अन्य गुड्स हैं, ऑटो पार्ट्स के हैं, एयरक्राफ्ट्स के हैं, यॉट्स के हैं, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और पेंट है। इनके अतिरिक्त जितने आइटम्स हैं, काउंसिल ने यह फैसला किया कि उनको लोअर कैटेगरीज में डाल देना चाहिए।
ये अरुण जेटली के शब्द थे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी गुजराती सेवा के संपादक अंकुर जैन। अरुण जेटली की आवाज़ हम सुन रहे थे, विनीत खरे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, अहमदाबाद में मौजूद हैं, गुजरात इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। इससे पहले कि हम उनके पास जाएं, सीधा सवाल आपसे कि श्रोताओं की टिप्पणियाँ भी हम लेंगे, उनकी राय को भी शामिल करेंगे। नोटबंदी और GST का असर तो पूरे देश पर हुआ है, गुजरात में कितना असर दिखेगा?
अगर आप देखें तो जब ये GST लागू हुआ था, जो सबसे पहले शुरुआती दौर के जो आंदोलन थे या प्रोटेस्ट हुए थे, वो गुजरात के सूरत से ही शुरू हुए थे और जो काफ़ी लंबा एक आंदोलन चला था, वो अहमदाबाद और सूरत समेत जो टेक्सटाइल मार्केट थे गुजरात के, वो काफ़ी दिनों तक बंद रहे थे और वहाँ की जो टेक्सटाइल यूनियन थी वो सड़कों पर आई थी और जिस प्रोटेस्ट में आपको याद हो तो एक बार लाठीचार्ज भी हुआ था। तो जाहिर तौर पर था, क्योंकि गुजरात और का सबसे जो बड़ा बिज़नेस सेक्टर है वो टेक्सटाइल है और कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा GST को लेकर विरोध हुआ था देश भर में। तो गुजरात में GST को लेकर आज भी विरोध जारी है, लेकिन अब ये देखना आने वाले दिनों में बड़ा मज़ेदार होगा कि इस विरोध का फ़ायदा कांग्रेस कितना ले सकती है।
सीधे कार्यक्रम में विनीत खरे को शामिल कर रहे हैं। विनीत, आप पिछले कई दिनों से गुजरात के विधानसभा चुनावों पर नज़र रख रहे हैं और GST का फैसला, आखिरकार जब ये फैसला बदल गया, थोड़ा सा GST से राहत मिल गई, किस तरह की आबो हवा आपको वहाँ नज़र आई?
मोहनलाल जी, तीन चार दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था अहमदाबाद में, तो सबसे पहले मैं टैक्सी में घुसा तो मैंने पूछा भाई कि यहाँ पर क्या माहौल है अभी। तो जो ड्राइवर था उसने बोला कि सर, यहाँ पे तो चीजें महंगी हो गई हैं, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं और भाजपा जिम्मेदार है और मुझे लगता है कि भाजपा इस बार हारेगी। ठीक है, कई लोगों से मैंने पूछा, भाजपा के तो मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल, दो दिन हमने फेसबुक लाइव किया, यहाँ से मार्केट्स में मैं गया और जो भाजपा और जो नरेंद्र मोदी पर्सनली उनके खिलाफ जो गुस्सा था कि एरोगेंस है ये सरकार का कि ये GST के लेकर इतने प्रदर्शन हुए हैं, जिसका जिक्र अंकुर ने किया, और सरकार इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार का अहंकार है, ये बीजेपी का अहंकार है, ये नरेंद्र मोदी पर्सनली उनका अहंकार है कि वो ईगो एक है कि वो नहीं घटाएंगे। कल फैसला आता है, जो GST काउंसिल के बाद जो फैसला आया, उसके बाद से दो तीन रिएक्शन मुझे मिले हैं। एक तो रेस्टोरेंट में जो 5% किया है GST 18% से, तो जो एक दो रेस्टोरेंट वाले थे उन्होंने बोला कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये अच्छा फैसला है। जो जिस तरह से खाना बाहर महंगा हो गया था, उससे बहुत नाराजगी थी लोअर मिडिल क्लास परिवार दोनों में। सेकेंड चीज, जो ट्रेडर से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि भाई टेक्सटाइल पर अभी तो उनके नजर में कोई फैसला अभी तक क्लैरिटी नहीं है सरकार की तरफ से, तो सरकार ने जो फैसला किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
विनीत, मैं आपको रोक रहा हूँ, जो बातचीत आपने कुछ लोगों से की थी वहाँ पर, व्यापारी वर्ग के कुछ लोगों से जो बातचीत की थी, उनकी आवाज हम यहाँ पर सुन लेते हैं।
आपका जो धंधा है उस पर किस तरह से असर पड़ा है और चुनाव में क्या मुद्दे और भी है इसके अलावा?
चुनाव के मुद्दे तो अब देखो कि भाई चुटनी का कोई कह नहीं सकते, जिसका पल्ला भारी वो इसी की जीत है। राजकारण की रमत तो बहुत डेंजर होती है।
अच्छा, तो आपके धंधे पर किस तरह से असर पड़ा है इकबाल भाई?
भाई GST का असर है बस।
कितना
तक के व्यापारी हमको दे हुए है, व्यापारी को फटिया जाने का बिल देता नहीं है और बोलता है जीएसटी भरो तो हम तुमको माल दे।
मेरा नाम मोहम्मद साबिर रसूल बख्श।
मोहम्मद साबिर रसूल बख्श, तो सर ये आपकी दुकान है, थोड़ा मुझे बताइए ड्रेसेस कितने की हैं?
मेरे और पास 400 रुपए का है, 500 रुपए का नंग है, 1000 रुपए का है, 1200 रुपए का नंग है।
तो जीएसटी के पहले कितना था और अब जीएसटी से आने से क्या फर्क पड़ा है?
बहुत फर्क पड़ गया धंधे के अंदर, 70% फेर पड़ गया, 30% धंधा रहा है, 70% नहीं है धंधा, खर्चा भी नहीं निकलता आज की तारीख में, लाइट बिल भी नहीं निकलता और हमारा खुद का भी खर्चा, पब्लिक आती नहीं है, जीएसटी लग गया जब से।
क्यों नहीं आती है? तो बहुत ज्यादा फर्क तो दाम में नहीं पड़ा होगा ना। अब ये ड्रेस बताइए कितने की अभी पड़ेगी और कितना फर्क पड़ा?
500 रुपए का नंग है, ये पहले हम 450 रुपए का नंग बेचते थे,
तो 50 रुपए का,
50 रुपए के हिसाब से पब्लिक घबरा गई, पब्लिक खरीदी करने ही नहीं आ रही।
तो किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं?
यहाँ सब मीडियम क्लास की पब्लिक आती है, रोज कमाने रोज खाने वाली पब्लिक आती है।
अच्छा, क्या नाम है सर आपका?
इम्तियाज भाई मंसूर।
इम्तियाज भाई मंसूर, तो बताइए कितनी बिक्री होती थी साल भर में पहले और जीएसटी और भी कोई क्या इश्यूज हैं? चुनाव में आप वोट देंगे तो क्या सोच के वोट देंगे?
देखिए इसमें कोई धंधे से तो कोई है नहीं, जीएसटी तो अच्छा है, आगे जाके सभी के लिए अच्छा है।
अच्छा, कैसे अच्छा है?
कैसे अच्छा है? धंधे के हिस्से भी अच्छा है और बाकी का जो देखे कि करप्शन भी मिट जाएगा, सारा सब मिट जाएगा।
अच्छा,
एक लेवल पे आके आदमी खड़ा रहेगा।
अच्छा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी जो है
पक्का।
अच्छा,
और जो भी बिजनेस है अभी वो काफी क्वाइट गुड।
अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, राहुल गांधी कहते हैं।
अभी ये तो उनकी सोच है, उनका काम है।
अच्छा,
अपना काम बिजनेस करना है, बिजनेस अच्छा है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे बिजनेस अच्छा है।
भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस है, विपक्ष है, भड़का रहा है व्यापारियों को जीएसटी के खिलाफ, इस पर क्या कहेंगे आप?
जो नहीं समझता उसके लिए कुछ नहीं है, समझता उसके लिए काफी कुछ है।
मेरा नाम यासीन है।
यासीन भाई, जीएसटी का क्या असर पड़ा है यहाँ पे आपके धंधे में?
बहुत असर पड़ा, 30% बढ़ गया।
अच्छा, बिजनेस बढ़ गया है आपका?
बढ़ गया।
अच्छा, ये तो मतलब अलग तरह की बात आप बता, कैसे बढ़ गया है? जैसे दाम बढ़े हैं, दाम घटे हैं, क्या हुआ है?
दाम बढ़ गए, ऐसे वाले के 135-140 हो गया।
कैसे? जैसे ये एलोवेरा की है,
अभी 120-130 की आ गए।
अच्छा, तो लोग खरीद रहे हैं?
खरीद,
लोगों को कोई इशू नहीं है?
कोई कसूर नहीं है।
तो ये मोहनलाल आपने सुना जो मेरी दुकानदारों से बात हुई, तो दो तीन चीजें हैं, कहीं ज्यादातर लोगों ने कहीं 90% उनका धंधा बैठ गया है, 30-40% धंधे पर असर पड़ा है, दिवाली में धंधा नहीं हुआ, ईद में धंधा नहीं हुआ। दूसरी चीज, चीजें महंगी हो गई हैं, प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स है, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर आते हैं वो 5-10 रुपए बढ़ने से भी चीजों को नहीं खरीदते हैं।
हाँ।
कुछ लोगों ने बोला कि उनको दुकानें तक बंद करनी पड़ेंगी।
लेकिन काफी असर कुल मिलाकर जनता जो है कई तरह की बातें कह रही है। यहाँ पर कार्यक्रम में अंकुर से भी हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक श्रोता को शामिल करेंगे, बहुत देर से श्रोता हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
सर नमस्कार।
नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं बंधु?
सर ओम नमः शिवाय रेडियो श्रोता संघ मुकाम पोस्ट सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंतीलाल।
हाँ बसंतीलाल जी, हाँ जी, अपनी राय रखें आप।
मैं जानना ये कहना चाहूंगा सर कि जीएसटी और नोटबंदी में तो मतलब बहुत फर्क पड़ गया सर, इसमें चुनाव पे भी मुद्दा बन सकता है और ये सही है मुद्दा। मतलब जीएसटी अगर मतलब किसान को लिए, जैसे आप 20 रुपए किलो अरंडी बीच रही है तो सोयाबीन 22 रुपए किलो, ये क्या भाव नहीं है सर? जीएसटी और नोटबंदी पे तो बहुत हद तक फर्क पड़ा सर,
बहुत हद तक फर्क पड़ा। बसंती लाल जी अपनी बात कह रहे थे। एक और कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर रहा हूँ मैं। नाम बताएं। नमस्कार।
हेलो।
नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
धनंजय बोलता है, गाँव वावली पोस्ट 57 तहसील कुमेर जिला भरतपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
अच्छा, राजस्थान से। जी अपनी राय रखे आप।
सबसे पहले मेरा बीबीसी हिंदी की पूरी टीम को स्वागत प्रणाम।
नमस्कार। नमस्कार
सर, मैं कहना चाहता हूँ जीएसटी का बहुत असर पड़ेगा सर।
गुजरात इलेक्शन पे, अभी राजस्थान में तो चुनाव है नहीं, गुजरात में असर पड़ेगा या आपके यहाँ जब इलेक्शन होगा तब?
हाँ सर, बहुत, यहाँ तो बीजेपी सुपड़ा साफ हो जाएगा सर।
अच्छा, ऐसा आपको लगता है? जी है। जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
नहीं सर।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। दो श्रोता हमने शामिल किए और इसी समय एक फेसबुक पर एक टिप्पणी आ गई है। शिवम गुप्ता लिख रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी काम वोट पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, ना कि आम आदमी को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये शिवम गुप्ता कह रहे हैं, फेसबुक पर अभी भी लिखा है। और एक श्रोता हैं जो कि फेसबुक पर टिप्पणी कर रहे हैं, अशोक शर्मा, वो कहते हैं कि अब क्यों नहीं कहा जा रहा कि दवा कड़वी लगती है, लगता है इस बात को गुजरात विधानसभा चुनाव तक ही भूल गए हैं। सरकार ने ये जो थोड़ी सी दरें घटाई 28% से लेकर 18% पर आ गए, 178 चीज़ों के जीएसटी की दरें घटा दी, सरकार को मालूम है कि जनता में इसके जो इसका मतांतर है, जनता जो है इससे थोड़ी त्रस्त है, ये सरकार को अब पता चला है, शायद ये इलेक्शन की पॉलिटिक्स है।
बिल्कुल, इसमें इसमें जो है दो मुद्दे हैं, अगर गुजरात चुनाव की बात करें तो इसमें दो मुद्दे जाहिर तौर पे दिख रहे हैं। पहला ये कि गुजरात में बीजेपी के जीतने का जो मुख्य कारण रहा है वो रहे हैं गुजरात के शहर, जो 45 के करीब सीट है चार बड़े शहरों की, जिसमें से सिर्फ तीन या चार कांग्रेस के पास जाती है, बाकी की पूरी बीजेपी ले जाती है। तो और दूसरा है जो जो गाँव की सीटें हैं, अब GST को लेकर गुस्सा है, वो गुस्सा जाहिर तौर पर शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि जो शहरों में टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग जो है, शहरों में जो
गुजरात जाना जाता है बिजनेस के लिए
तो जो शहरों का गुस्सा जो है, अब इसको काबू करने के लिए कल आप जो देखें जो 178 चीज़ों में जो दाम घटाए हैं जिन चीज़ों के, उसमें से कई सारी वो चीज़ें हैं जिसमें अब रेस्टोरेंट की बात करें, ऐसी चीज़ें हैं जिनको शहर वाले ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और उनको जो चीज़ें महंगी हो गई थी अब इसे सस्ती होगी। अब ये जाहिर तौर पर है कि कांग्रेस अब इस गुस्से का फ़ायदा इस चुनाव में कितना उठा पाएगी। दूसरा मुद्दा ये है कि क्या जो लोग गुस्साए हैं GST से, क्या वो कांग्रेस को वोट करेंगे? मेरी इस बारे में कई लोगों से पिछले दिनों बात हुई है तो मिली जुली सी राय है। कई लोग कह रहे हैं कि GST से गुस्सा जरूर है पर बीजेपी से नाराज नहीं है। और
इसी तरह की नोटबंदी पर भी दो तरह की राय है कि नोटबंदी से लोग नाराज हैं, थोड़ा सा उनको कष्ट हुआ, लाइनों में लगना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर बात वो अंत में ये कह देते हैं इससे देश का जो है वो आगे चल के भविष्य होगा।
बिल्कुल, तो आप गुस्सा भी जो देखे वो गुस्सा GST को लेकर जितना नहीं है गुजरात में, वो गुस्सा है GST के प्रोसेस को लेकर। कई लोग ये कह रहे हैं कि GST टैक्स जो है एज ए रेजीम जो है वो ठीक है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सरकार ने अच्छी तरह से नहीं किया, कि शायद उसको प्रोसेस में लॉन्च करना चाहिए था, उसको धीमे धीमे इकोनॉमी में लाना चाहिए था, या जो इम्प्लीमेंटेशन में जो पेपर वर्क रखा है वो पेपर वर्क की वजह से कई लोग ज्यादा गुस्साए में हैं। तो GST टैक्स को लेकर एक मिली जुली सी राय है, पर हाँ इम्प्लीमेंटेशन पर लोगों में गुस्सा जरूर है वहां पर।
विनीत खरे के पास चल रहे हैं। विनीत, कांग्रेस जो है इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, इन दोनों मुद्दों को। आपकी तमाम खेमे के लोगों से बात हुई होगी, निश्चित तौर पर बात है कि वहाँ की आम जनता से तो आप बात कर ही रहे हैं। क्या लगता है कि नोटबंदी, GST, कांग्रेस के पास इस समय बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस क्या इसे सफलतापूर्वक भुना पाने की स्थिति में है?
देखिए मोहनलाल, इस सवाल का क्लियर कट जवाब कोई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, माफ कीजिएगा, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन क्या ये गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि लोग कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इवन पाटीदारों में आप देखिए, पाटीदार ये कोई समूह नहीं है, वो विभिन्न संगठनों में बटा है। जो यंग पाटीदार है वो आपको टीवी पे ज्यादा दिखते हैं कि भाई वो भी भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर वो OBC में वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी कई लोग ये कहते हैं कि जो पुराने जो एल्डरली हैं, जो भाजपा को सालों से उनका परिवार वोट,
जो हार्ड कोर वोटर जिसको हम कहते हैं वोट बैंक,
एग्जैक्टली उसमें कितना बदलाव आएगा, वो जो एंगर है क्या वोट में बदलेगा नहीं कांग्रेस के फेवर में, ये देखना होगा।
राहुल गांधी बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं अंकुर, वहां पर आम जनता के साथ संवाद कर रहे हैं और गुजराती शैली में बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी की जो सत्ता रही है, लंबे समय तक सत्ता रही, देश के प्रधानमंत्री बन गए बात अलग है, लेकिन कुल मिलाकर वर्चस्व उन्हीं का रहा और उन्हीं की राजनीति के इर्द गिर्द गुजरात की राजनीति घूमती रही। ये इस बार का जो मामला है, व्यापारी, पटेल, दलित, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्या देखते हैं?
बिल्कुल, देखें तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है कि खास करके जिस तरह से पाटीदार, दलित और OBC आंदोलन जो चले हैं, क्षत्रियों का आंदोलन गुजरात में चल रहा है, जो व्यापारी वर्ग है वो नाराज है GST से, नोटबंदी को लेकर गुजरात में जाहिर तौर पे गांव में नाराजगी है, तो इन सब के बीच में जो उभर के आ रहा है वो कांग्रेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ राहुल गांधी है जो गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस एज अ पार्टी अभी भी इस चुनाव में अपने आप को एकजुट करके जनता के सामने जाती नहीं दिख रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये बड़ा मज़ेदार होगा देखना कि हार्दिक पटेल किस ओर रुख करते हैं। क्या हार्दिक पटेल राहुल गांधी के साथ औपचारिक रूप से हाथ मिलाकर एक मन से हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और राहुल गांधी खड़े रहते हैं? क्योंकि ये आप मोहनलाल जी
तिकड़ी है, बेसिकली
ये तिकड़ी है और ये गुजरात की राजनीति में पहली बार होगा कि पटेल, इतने बड़े पटेल और ओबीसी नेता साथ में किसी पार्टी के साथ जुड़े हों। क्योंकि आप गुजरात की राजनीति को देखें तो गुजरात की राजनीति में पटेल और ओबीसी हमेशा एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे हैं। ये पहली बार होगा कि पटेल, दलित और ओबीसी एक मंच पर, अगर राहुल गांधी ने ला पाते हैं तो एक साथ खड़े रहेंगे।
हालांकि राजनीति संभावनाओं और कयासों का गठजोड़ का मामला है, उसमें कब किस तरह से चीजें बदल जाए कहीं नहीं जा सकती। कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं विमल कुमार बोल रहा हूँ।
हाँ विमल जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
कटौती गांव और जिला नागौर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
जी नागौर राजस्थान से बताएं।
मेरा सवाल यही है कि जिस प्रकार कोई भी कानून बनता है तो उससे पहले उसे तोड़ने का कानून जरूर बन जाता है, क्या जीएसटी यही सिद्ध करेगा या इससे यही हमें मिलेगा क्या?
जीएसटी से मिलेगा क्या आपका, आप ये कह रहे हैं ना?
जी सर।
वैसे सरकार का तर्क तो ये है कि जीएसटी से देश की आय होगी और वो बहुत बड़ा जो वर्ग है जो कि टैक्स से अछूता रहता है, और कुल मिलाकर सारी कवायद का जो भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार की कवायद का जो मुख्य मकसद था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर के दायरे में लाया जाए, उनसे कर लिया जाए ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो आगे पटरी पर बढ़ सके। ये सरकार का तर्क है, इसके नफा नुकसान वो आगे की बात है। एक श्रोता को शामिल करता हूँ, नाम बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
जी राजेंद्र सिंह गोदारा जोधपुर से बोल रहा हूँ।
आज सारे राजस्थान से ही फोन आ रहे हैं। जी क्या नाम बताया आपने? राजेंद्र सिंह जी।
राजेंद्र सिंह गोदारा
जी। राजेंद्र सिंह जी अपनी बात कहें।
जी मैं ये कह रहा हूँ कि पटेल और व्यापारी और दलित नाराज तो है,
हाँ।
और ये की अभी थोड़ा कम भी कर दिया, लेकिन उनके और कांग्रेस में क्या अभी शंकर सिंह वाघेला भी उनसे अलग हो चुके हैं,
हाँ।
तो क्या है? अभी वो देखेंगे कांग्रेस के पास नेतृत्व लेने के कारण वो हो सकता है करेंगे।
आपकी आवाज टेलीफोन लाइन पर कट रही है, लेकिन कुल मिलाकर उस बातचीत का मर्म है
कि मौका है कांग्रेस के पास,
वो ये कह रहे कि राहुल गांधी लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। विनीत खरे को दोबारा एक बार फिर से चल रहा हूँ। विनीत, ये जो हमारे श्रोता है ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के लिए तो मौका है, अब संगठन की बात कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी चीजों को एकत्र कर पाते हैं, उसका फायदा उठा पाते हैं, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है?
देखिए, एक तो कांग्रेस में खुद ही इतनी इनफाइटिंग है, उनके ग्रुप्स हैं, अहमद पटेल ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, तो उसमें इकट्ठा करना एक चैलेंज है, वो कैसे हो पाता है? सेकंड, कांग्रेस का गुजरात में फेस क्या है? ये लोग सवाल उठाते हैं भाई कि आप वोट करेंगे तो किसके नाम पे वोट करेंगे? भाई राहुल गांधी आते हैं दिल्ली से, गुजरात में 4 दिन बिताते हैं, वापस चले जाते हैं, और पूर्व में लोग उनकी इनकंसिस्टेंसी पर भी सवाल उठाते हैं कि यूपी में गए, 4 मुद्दे उठाए, वापस गए, उसके बाद से फिर यूरोप चले गए छुट्टी मनाने। तो ये मतलब ये लोग उस इनकंसिस्टेंसी है सो कॉल्ड, या फिर लैक ऑफ चेहरा, उनका जो चेहरा नहीं है यहाँ पर, और कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट है, वो कैसे ओवरकम कर पाएंगे, ये अपने आप में एक चैलेंज है।
विनीत, यहाँ पर अंकुर से मैं एक सवाल पूछना चाहूँ। अंकुर, सवाल ये कि क्या कांग्रेस को व्यापारी वर्ग की नाराजगी का राजनीतिक लाभ होगा? क्या ये जो नाराजगी है वो उसके लिए वोटों में तब्दील हो पाएगी? हो सकती है, क्योंकि भीड़ जुटाना एक अलग बात है, लेकिन भैया जब मोहर लगाने की बात आती है, जब बटन दबाना होता है ना, तो लोग भूल जाते हैं कि आप किससे नाराज हैं और किसके लिए आप क्या कहते थे। वोट दबाते हैं वहीं पर जहां पर, यानी कि फ्लोटिंग वोट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
बिल्कुल, ये आप देखें तो पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुजरात के दौरे पे थे और उन्होंने एक सभा करनी चाहिए थी अहमदाबाद में, जो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का समूह है उनके साथ। तो इस चैम्बर ने मनमोहन सिंह को सभा करने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने कहा कि हम राजनीतिक कोई भी संवाद में आपसे जुड़ना नहीं चाहते। तो मनमोहन सिंह इस सभा को, इस सभी जो व्यापारी वर्ग है इनको इनका संबोधन नहीं कर पाए। तो मुश्किल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर है गुजरात में, जो उसका एक जो 39 के करीब जो कांग्रेस का वोट शेयर रहता है गुजरात के चुनाव में, वो ज़्यादातर रूरल वोटर है, वो गाँव में रहता है, वो शहरों में नहीं रहता। शहरों में कांग्रेस के लिए ये मौका ज़रूर है जीएसटी के बाद और नोटबंदी के बाद, कि वो शहर गुजरात के शहरों में जा सके, अपने आप की प्रेजेंस फील करा सके। लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा विनीत कह रहे थे कि गुजरात में आज भी कांग्रेस के पास एक लोकल चेहरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो विनीत जो कह रहे थे, जिन लोगों से बात की, जो पटेल युवा हैं, अब पटेल युवा हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार देखी नहीं है, क्योंकि इस बार का बीजेपी का जो कैंपेन है
वो भूल भी गए होंगे जिन्होंने देखी है कांग्रेस की सरकार।
इस बार जिस बीजेपी का कैंपेन है वो ये है कि भाई कांग्रेस की सरकार गुजरात में जो 95 से पहले थी वो इस तरह की सरकार थी और हमने देखो इस तरह का काम किया है। लेकिन जिन लोगों ने वो सरकार देखी नहीं उनके पास तो कंपैरिजन सिर्फ इसी सरकार का है, और ये वही लोग हैं जो विकास पगला गया है वो बात कर रहे हैं, तो शायद ये लोग अब कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं।
कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं। हेलो, हेलो जी, नाम बताइए। थोड़ी सी आवाज बढ़ा लें अपनी। अलका जी, अलका जी अपनी बात कहें। बहुत हल्की आवाज आ रही है, बहुत हल्की आवाज आ रही है। एक और श्रोता के पास चलते हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं?
हाँ दादा साहब पाटिल बोल रहे हैं सर, महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र से बोल रहे हैं दादा साहब पाटिल?
हाँ
जी, अपनी बात कहें आप।
हाँ सर, मुझे लगता है कि जीएसटी और नोटबंदी से अभी दो दिन पहले, कल ही गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी से बहुत सी चीजें 28% से बाहर कर दी है, तो ये तो एक देख के तो ये सरकार की हार ही है ना। वो जीएसटी इतने जल्दबाजी में उन्होंने लागू किया और उसमें जो बदलाव कर रहे हैं, अमूल चूर परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो इससे संदेश यही जा रहा है कि और पहले तो नोटबंदी का हुआ और ये बाद में जीएसटी का, इससे तो जनता समझ गई है कि ये सरकार निर्णय लेने में अपनी असक्षमता दिखा रही है और उसके निर्णय हड़बड़ाटी में ले जा रहे हैं। तो
हड़बड़ी में निर्णय लिए हैं सरकार ने। जी एक और श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, नाम बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
भूप सिंह परमार, पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर।
अच्छा बाड़मेर से बोल रहे हैं भूप सिंह, बात
मैं ये जी मैं ये जीएसटी ये जो है ये देश की गरीब जनता के लिए और देश के आम नागरिक के लिए फायदे में है और पूंजीपति और बड़े करोड़पति लोगों का नुकसान है। इसमें देश की जनता को ये समझना चाहिए और भारत के अंदर मोदी के जैसा न तो कोई प्रधानमंत्री हुआ है और शायद ही हो भविष्य में भी, इसलिए मैं देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें, उससे देश की जनता का हित होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार जो तर्क दे रही है वही ये हमारे श्रोता भी तर्क दे रहे हैं। आखिरी टिप्पणी के लिए विनीत खरे के पास जा रहा हूँ
मैं। बस हाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का जिक्र होता है मोहला, लेकिन जो आम लोगों के मुद्दे हैं उनका कोई जिक्र नहीं है, ट्रैफिक का कोई जिक्र नहीं है, टॉयलेट्स का नहीं है उनका कोई जिक्र नहीं है, पोल्यूशन गुजरात में अहमदाबाद में इतना बड़ा मुद्दा है जो लोगों की जिंदगी को असर करता है उसका कोई जिक्र नहीं है, जीएसटी और ऑफकोर्स लोगों को असर करता है लेकिन जो बेसिक लोगों के मुद्दे उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप यहाँ पे अखबार खोले, एटलीस्ट मैंने अंग्रेजी अखबार देख रहे हैं, उनका इलेक्शन का कहीं जिक्र ही नहीं है।
और मतलब
क्या हाँ, मुद्दे हैं जो लोग
जनता के मुद्दे
गायब नहीं, और इस बार पहली बार एक बदलाव जरूर है विनीत की, इस बार पहली बार है कि बेरोजगारी एक मुद्दा निकल के आया है, जो गुजरात में जो सिर्फ जो एक विकास की बात होती थी कि गुजरात को बना देंगे, गुजरात के शहरों को सिंगापुर जैसा या शंघाई जैसा, लेकिन अब जो है बुनियादी बात हो रही है, लोग मांग रहे हैं कि भाई सड़कें ठीक करें, आप हमें नौकरी दें, तो ये भी, और गरीबी की बात हो रही है, तो ये मुद्दे आए हैं, लेकिन विनीत की बात बिल्कुल सही है कि जो असली मुद्दे हैं लोगों से
मुद्दे हैं
वो कहीं ना
बेरोजगारी का, सड़क का, पानी का, तो ये मुद्दे गायब है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत खरे सीधे अहमदाबाद से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अंकुर भाई एक फेसबुक पर कमेंट है, मैं पढ़ लेता हूँ। जमीर उमर हैं जो कि कह रहे हैं कि मेरे विचार से नोटबंदी से गुजरात चुनाव पर असर नहीं दिखेगा, नोटबंदी के बाद यूपी का चुनाव हुआ, 3 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी जीती, सरकार टैक्स रेट घटा रही है और देशभक्ति का रेट बढ़ा रही है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और गुजरात में जातीय समीकरण चुनाव परिणाम में अहम फैक्टर हो सकते हैं, साथ ही वगैरह फैक्टर भी दम है इसमें।
बिल्कुल इनकी 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 जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, जो मैं पहले कह रहा था कि आपसे कि इन नोटबंदी और जीएसटी को लेकर गुस्सा जरूर है, लेकिन वो गुस्सा, उस गुस्से का मतलब कांग्रेस से प्यार है वो तो गुजरात में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस के लिए एक मौका निकल के आया है जीएसटी नोटबंदी और गुजरात में जो आंदोलन चल रहे हैं उसको लेकर, और जो उन्होंने एक दूसरी जो टिप्पणी की है दूसरी वाली
जाति समीकरण
बिल्कुल सी ये एक बड़ा सा है कि गुजरात में जाति समीकरण हमेशा से ही एक मुख्य मुद्दा रहे हैं, लेकिन 2014 में जब मोदी दिल्ली से गुजरात से दिल्ली आ गए तो हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया, और वो जब वो हिंदुत्व की चादर जब हटी तब वो जाति के जो समीकरण जो थे हमेशा वो ज्यादा दिखने लगे।
भारतीय राजनीति की विडंबना यही है कि
बहुत सारे फैक्टर
एक साथ काम करते हैं और कभी कोई फैक्टर ऊपर हो जाता है और कभी कोई फैक्टर नीचे चला जाता है, मतलब इसको कहेंगे कि कब कौन सी चीज किस तरह से अवसर के रूप में आ जाए कह नहीं सकते।
बिल्कुल बिल्कुल, और जाति समीकरण खास करके जो पटेल ओबीसी और दलित आंदोलन चल रहे हैं उसको लेकर ये दिख रहा है कि अब कौन किसके साथ जाएगा। ये इस चुनाव में आई थिंक 2 महीने पहले कोई नहीं कह सकता था कि राहुल गांधी और अल्पेश एकजुट हो जाएंगे, कोई नहीं कह सकता था कि हार्दिक पटेल और कांग्रेस एकजुट हो जाएगी।
यहीं पर एक टिप्पणी पढ़ देता हूँ, सादिक आजमी है फेसबुक पर, उन्होंने तुरंत टिप्पणी की है कि कांग्रेस जीत रही है गुजरात में, हालांकि ये भविष्य की बात है कि अभी तो वोट पड़ेंगे, देखा जाएगा कौन किसके साथ जाएगा, और इन सारे सवाले जो तमाम सवाल हैं उनको हम भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जैन। तो बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में मुलाकात होगी। इस दौरान bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।